नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर लोगों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। 3 हफ्ते में दूसरी बार सीएनजी की कीमतों में इजाफा हो गया है। राजधानी दिल्ली के अलावा नोएडा और गाजियाबाद में भी सीएनजी की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के अनुसार अब दिल्ली एनसीआर वालों को सीएनजी के लिए 1 रुपये प्रति किलो ज्यादा चुकाना होगा। भाव बढ़ने के बाद दिल्ली एनसीआर में अब सीएनजी का नया रेट 76.59 रुपये प्रति किलोग्राम होगा, जबकि नोएडा वासियों को 1 किलो सीएनजी के लिए 82.20 रुपये का दाम चुकाना होगा। वहीं बात करें गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा की, तो यहां अब सीएनजी 80.20 रुपये प्रति किलोग्राम की जगह 81.20 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलेगी। गौर करने वाली बात है कि सीएनजी की कीमतों में ये इजाफा 20 दिनों में दूसरी बार किया गया है। इससे पहले 23 नवंबर को भी दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम बढ़ाए गए थे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने बुधवार को कहा कि भारत के विकास पथ में कृषि क्षेत्र की केंद्रीय भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि मजबूत ग्रामीण मांग विनिर्माण और आर्थिक पुनरुद्धार का समर्थन करती है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार नीतिक आयोग और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य भारत के विकास उद्देश्यों में योगदान देने वाली नीति और कार्यक्रम ढांचे को मजबूत करना है। इस मौके पर बेरी के हवाले से बयान में कहा गया, भारत के विकास पथ में कृषि केंद्रीय भूमिका निभाएगी। बेरी ने कहा कि कृषि की उत्पादकता में वृद्धि के साथ ही प्राकृतिक और मिट्टी के अनुकूल प्रथाओं की ओर बदलाव महत्वपूर्ण है। एआई पर वैश्विक साझेदारी के 29 सदस्यों के गठबंधन ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा को अपनाया है। इसमें लाभकारी अनुप्रयोगों पर सहयोगात्मक दृष्टिकोण, लोगों की सुरक्षा और भरोसेमंद एआई के संबंध में एक वैश्विक ढांचे के लिए प्रतिबद्धता जताई गई है। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कृत्रिम मेधा पर वैश्विक साझेदारी शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान कहा कि घोषणा में यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि एआई और उसके लाभ वैश्विक दक्षिण सहित दुनिया के सभी देशों के लिए समान रूप से उपलब्ध हों। उन्होंने कहा, हमारी 4.5 घंटे की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक हुई, जिसमें GPAI के 29 भागीदार देशों ने भाग लिया और सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा को अपनाया। इसमें नवाचार के मामले में एआई के भविष्य को आकार देने और सहयोगी एआई के लिए GPAI को सबसे आगे रखने का वादा किया गया है। देश के बैंकों ने अपनी अनुषंगी इकाइयों के जरिए विदेशों में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। विदेशों में कार्यरत ऐसी इकाइयों की संख्या बीते वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़कर 417 हो गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 399 थी। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2022-23 पर बुधवार को जारी सर्वे में यह भी कहा गया है कि बैंकों के कर्मचारियों की संख्या भी विदेशी शाखाओं और अनुषंगी इकाइयों के जरिए क्रमशः 0.5% और 6.2% बढ़ी। RBI के सर्वे में उन 14 भारतीय बैंकों को शामिल किया गया है जिनकी विदेशों में शाखाएं और अनुषंगी इकाइयां हैं। इसके अलावा इसमें 44 विदेशी बैंकों को भी शामिल किया गया है जिनकी शाखाएं या अनुषंगी इकाइयां भारत में हैं। दूसरी तरफ विदेशी बैंकों की भारत में शाखाएं और कर्मचारियों की संख्या में 2022-23 के दौरान कमी आई है। सरकार ने बुधवार को व्यापारियों के लिए आयात निगरानी प्रणाली के तहत पीली मटर के आयात को पंजीकृत करने की प्रक्रिया को अधिसूचित किया। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा कि कोई आयातक DGFT वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रणाली के तहत आवेदन कर सकता है। DGFT ने कहा, इस ऑनलाइन प्रणाली में अग्रिम जानकारी जमा करने और ₹500 के ऑनलाइन भुगतान पर आयातक को एक स्वचालित पंजीकरण संख्या जारी की जाएगी। आयातक को आयात खेप के आगमन की अपेक्षित तिथि से 5 दिन पहले पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। उसके बाद उसे आयात मंजूरी के लिए आवेदन करते समय संबंधित सीमा शुल्क अधिकारियों को पंजीकरण संख्या जमा करनी होगी। भारतीय स्टेट बैंक ने बुधवार को कहा कि वो देश में सौर परियोजना को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक KfW के साथ 7 करोड़ यूरो ऋण सुविधा करार पर हस्ताक्षर करेगा। SBI ने एक नियामकीय सूचना में कहा कि समझौते पर 14 दिसंबर को बैंक की अहमदाबाद स्थित IFSC गिफ्ट सिटी शाखा में हस्ताक्षर किए जाएंगे। LOC का उद्देश्य भारत में सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं का समर्थन करना है। देश के सबसे बड़े ऋणदाता SBI का सितंबर तिमाही में एकीकृत शुद्ध मुनाफा 9.13% बढ़कर 16,099 5.58 करोड़ रुपए हो गया, जो एक साल पहले की इसी अवधि में 14,752 करोड़ रुपए थी। एकल आधार पर इसने 14,330.02 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में ये 13,264.52 करोड़ रुपए का हुआ था। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।